हम अली अकबर मिर्जा की तरफ जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो दोनों बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और रूस, वो उनके सरबराहान मिले थे, लेकिन नजर ये आता है कि कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो दाइश के खिलाफ काम करें। इस सिलसिले में बताइए कि इस वक्त आप क्या देखते हैं कि अमेरिका की क्या हिकमत अमली है दाइश के खिलाफ?
देखिए, अमेरिका का मसला ये रहा है कि वो जिन लोगों के खिलाफ जंग करना चाहता है, ISIS, उसमें उसका कोई पार्टनर नहीं है, हकीकी पार्टनर। जो अरब ममालिक कोलिशन में शामिल हुए, उन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में और बमबारी में, ये सबके सामने है। ना होने के बराबर उनका किरदार रहा है, बल्कि कई अरब ममालिक दाश और ISIS की दरपर्दा मदद भी करते हैं, इसलिए कि वो फाइनेंशियली भी और मोरली भी, और लोगों को भेजने के सिलसिले में भी, इसलिए कि वो बशार उल असद को पसंद नहीं करते। दूसरा मसला अमेरिका का ये रहा है कि ठीक है, आप सीरिया में और इराक में दाइश और ISIS के खिलाफ लड़ रहे हैं। इराक में ये आपका एक पार्टनर है, जो एक इराकी हुकूमत है, और कुर्द्स भी मौजूद हैं, लेकिन सीरिया में आपका पार्टनर कौन है? अमेरिका और मगरबी ममालिक और ये अरब ममालिक का जो कोएलिशन बनाया है, इन्होंने 2 साल में की कोशिश की कि यहाँ पर कोई मॉडरेट फोर्सेस तैयार हो सके, तो उनको मुश्किल से 5 लोग मिले हैं अभी तक, सिर्फ 5। और जो एक इन्होंने ग्रुप तैयार किया था 40-50 लोगों का, वो पहले दिन उसका ISIS ने सफाया कर दिया, उसमें से सिर्फ 2-4 ही बचे थे। तो अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए, सबसे पहले हकीकतों को हमें रियलाइज करना चाहिए कि ISIS के तो है सीरिया में, लेकिन बशार उल असद को जो हटाने का मसला है, ये हमारे लिए पहली नौइयत का मसला नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं कि यू हैव टू फाइट द कैंसर इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव, सो दैट यू कैन फाइट द स्किन रैश लेटर ऑन।
जी जी,
आपको कैंसर से पहले जंग करनी है, ताकि आप कैंसर से बच के अपनी जान बचाएं। तो फिर ये जो स्किन रैश होती है ना, छोटी सी मामूली सी, ये तो आप बाद में भी इसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले स्किन रैश को से लड़ने पे लग जाए कि जी मुझे ये स्किन रैश जो है ये खत्म करनी है, और इन द मीन टाइम कैंसर जो है फैल के आपको मार दे, तो आप मर जाएंगे और स्किन रैश खत्म नहीं होगा। तो बशार उल असद के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, यकीनन बशार उल असद एक डिक्टेटर है, लेकिन डिक्टेटर तो सऊदी अरब के हुक्मरान भी हैं, डिक्टेटर बहरीन के हुक्मरान भी हैं, वो भी एक मुतलकुल अनान हुक्मरान है, जिनके पास ह्यूमन राइट की बहुत सी वायलेशन उनके मुल्क में रोजाना होती है, तो हम उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? ये है कि हमने इसको अपनी जिद और अना का मसला बना लिया है, और इसलिए बना लिया है कि वहां पर ईरान, इराक, हिजबुल्ला का एक बहुत ही मजबूत, और सीरिया के हवाले से एक मजबूत अलायंस बन रहा था, कि जो कि हमारे अलायंस जिनको हम कहते हैं सऊदी अरब और इसराइल, उनके लिए एक खतरा बन रहा था। इसलिए हम असद को हटाना चाहते हैं। इस हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए कि इस तरह से हम असद को नहीं हटा सकेंगे, ना ISIS को शिकस्त दे सकेंगे। और अब ये बात मेरे ख्याल से बराक ओबामा को भी समझ में आ रही है, इसलिए कि पुतिन से मिलने के बाद यकीनन समझौता तो कोई नहीं हो सका, लेकिन जो लहजे में तब्दीली आई है सदर बराक ओबामा के, उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि वो इस बात को कंसीडर करने के लिए तैयार हैं कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हो, जिस पर बशार उल असद को हटा के कोई नई फोर्सेस सामने ले आए, लेकिन पहली जंग जो होगी प्रायोरिटी अब ISIS होगी। ये मेरे ख्याल से तब्दीली आई है, फ्रांस का भी यही रवैया है, फ्रांस की भी यही पॉलिसी हो गई है, के सदर भी गए थे अभी रशिया, और में जो पार्लियामेंट में आज गुफ्तगू हो रही है उसमें भी ISIS के खिलाफ बात कर। और
आप दुरुस्त कहते हैं कि इस वक्त बरतानिया भी गालिबन फ्रांस की मदद करने को तैयार है कि वहां फजाई हमले करके दाइश को हराया जाए, लेकिन ये बताएं कि अमेरिका के अंदर भी एक बात तस्लीम की जाती है कि बगैर जमीनी फौजों के अमेरिका कभी भी ये जंग नहीं जीत सकता, तो ऐसे में जब सिर्फ फजाई हमले किए जाएं, आपके ख्याल में क्या गुंजाइश बनती है दाइश को हराने की?
यही मसला है, और अमेरिका ने 2 साल इसी चक्कर में जाया कर दिए कि वहां पर कोई उनको रिलायबल पार्टनर मिले जो कि जमीनी जंग कर सके, इसलिए कि अमेरिकन आवाम तैयार नहीं है अपनी फौजों को भेजने के लिए, और अमेरिका को फौजें सारी दुनिया में भेजना भी नहीं चाहिए हर जगह, इसलिए कि मुकामी लोग जो है, मुकामी मुल्क जो है, मुसलमानों के मुल्क जो है चारों तरफ, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ISIS और दाश के दहशतगर्दों के खिलाफ पहली जंग और हर अवल दस्ते का काम वो ममालिक करें। तो अब मसला यह है कि बूट्स वहां पर कौन है, रिलायबल बूट्स وہ بشار الاسد کی سیرین آرمی ہے, وہ ہیں حزباللہ کے لوگ جو لبنان سے جا کے لڑ رہے ہیں, وہ ہیں ایرانی بیکڈ اور عراقی گورنمنٹ کی پشپنائی رکھتے ہوئے مختلف ملیشیا جو جنگ کر سکتی ہیں, آپ کے کرد ہیں. لیکن کرد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہم نے جن لوگوں کو ناقابل اعتبار لوگوں کو اپنا الائز بنایا ہوا ہے وہ کردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جیسے ٹرکی ہے, ہم ٹرکی کو ہم کہتے ہیں ہمارا پارٹنر ہے دہشت گردی کے خلاف, لیکن ٹرکی کی پوری سرحد جو ہے اور پورے ریسورسز جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں بشار الاسد کے خلاف, آئی ایس ایس کے خلاف نہیں ہو رہے, وہ ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں کرد کے خلاف, اس لیے کہ ٹرکش حکومت جو ہے وہ کرد کو اپنا اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بات کہہ دوں کہ سب پوری دنیا یہ جانتی ہے, امریکن حکومت نے بھی, ویسٹرن حکومت نے بھی, حکومتوں نے اور ساری دنیا کی حکومتوں اور میجر نیٹورک ٹیلی ویژن ذرائع ابلاغ نے یہ کہا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے پاس فنڈنگ آئل کو بیچ کر آتی ہے. میں بھی اگری کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایس آئی ایس آئل کو بیچ کر ریونیو کما رہی ہے تو وہ کسی کو بیچ بھی تو رہے نا, وہ کون ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیوں نہیں کی جاتی کہ بھائی ان سے آئی ایس آئی ایس سے آئل خریدنے والے یہ لوگ ہیں. اب رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ آئل جو بلیک مارکیٹ میں آئی ایس آئی ایس سے خریدا جاتا ہے وہ ٹرکی میں خریدا جاتا ہے, اور اس سے پیسہ ملتا ہے آئی ایس کو. تو یہ جو ہمارے الائز ہیں ناقابل اعتبار قسم کے الائز, یہ بھی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں نا.